10 घ इतिहास व वंश परंपरा। इतिहास एवं वंश परंपरा प्राचीन भारतीय इतिहास शास्त्र हिस्टोरियोग्राफी के सम्यक अवबोध के लिए वंश परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए प्राचीन काल से प्रचलित वंश परंपरा का अनुशीलन होना आवश्यक है। प्राचीन भारत का कोई भी इतिहास लेखन वंश परंपरा के अभाव में संभव ही नहीं है। डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे का कथन है कि वैदिक साहित्य में विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक लेखनों का अस्तित्व प्रमाणित होता है। वंश गाथाएं, नारासंसी एवं दानस्तुति वंश पुरोहितों तथा राजाओं की वंशावलियों की सूची देते हैं। इस प्रसंग में सर्वप्रथम वैदिक साहित्य में विभिन्न स्थानों पर उद्धत शिक्षकों की वंश सूचियों का उल्लेख किया जाना चाहिए। इस सूची में कभी कभी 58 तथा 60 नामों तक शिक्षकों की अनुक्रमिक सूची दी गई है। सूची के प्रारंभ में दिए गए देवताओं के नामों को छोड़कर मनुष्यों के नाम से अधिक संभवतया ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम हैं। इस संदर्भ में वंश ब्राह्मण नामक ब्राह्मण ग्रंथ विशेष धातव्य है, जिसमें सामवेद के आचार्यों की वंश परंपरा दी गई है। प्राचीन ऋषियों के इतिहास जानने के लिए यह ग्रंथ बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। वैदिक मंत्रों के कर्ता ऋषियों के अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग वंश और शाखाएं हैं। समग्र वैदिक साहित्य में जिन सहस्रों ऋषिजनों का नाम उपलब्ध होता है, उनके प्रथम 4 संप्रदाय थे मुनिना चतुर्विधो भेद ऋषयः ऋषिका ऋषिपुत्राः महर्षयः। महर्षि वंश ज्ञान का अधिकारी था। ये महर्षि 10 हुए। इन 10 महर्षियों के पुत्र या शिष्य ऋषि कहे गए, जिनकी संख्या 13 थी। उराना, बृहस्पति, कश्यप, च्यवन, उत्थय, उत्तथ्य, वामदेव, वामवेद, अगस्त्य, उशिक, कर्दभ, विश्रवा, शक्ति, बालरी वल्य और अर्वत थे। महर्षि और ऋषियों के बाद ऋषि पुत्रों का स्थान आता है। महर्षि, ऋषि और ऋषि पुत्र एक प्रकार के एक ही दाय परंपरा से संबंधित थे। इस वंश परंपरा के अतिरिक्त ऋषि का एक प्रकार से ऋषि पुत्रों की शिष्य शाखाएं थी, जो बाद में ऋषि पुत्रों के पृष्ठ संख्या 164 उत्तरवर्ती वंशजों के वंशजों से इस प्रकार मिलकर एकाकार हो गए कि इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऋषि पुत्रों और ऋषिकाओं की संख्या कई सौ तक पहुंचती है और उनके एक रूप हो जाने के बाद यही संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। भृगुकुल, अंगिरा कुल, कश्यप कुल, अत्रिकुल, वशिष्ठ कुल, अगस्त्य कुल आदि अनेक वंशों की स्थापना का सहस्रों वर्षों तक ये वंश वृद्धि पाते रहे। इन्हीं वंशों की वंशावलियां इतिहास के वंश साहित्य के रूप में लिखी गई। वंश साहित्य वंशानुचरित एवं अनुवंश के रूप में प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। ऋग्वैदिक गाथाओं का ही एक प्रकार अनुवंश महाभारत में उल्लेखित है। अनुवंशों के कतिपय उदाहरण वन पर्व में है। 1. अति चात्र महायोगी मार्कण्डेयो महायशाः अनुवंश्याम जगौ गाथाम तपस्य धरणीपतैः। 2. तत्रानुवंशो रुद्रस्य तम निबोध युधिष्ठर। 3. अत्रानुवंशम पठतः श्रृणु मे कुरु नंदन। सूत्रों द्वारा विभिन्न राजपरिवारों की वंशावली लिखी जाती थी। भृगुवांगिरसों की परिवार परंपरा में सूत्र भी आते हैं। वंश ऐतिहासिक रचना के प्रतिनिधि रूप में मान्य थे। बिखरी हुई ऐतिहासिक रचनाएं संग्रहित कर व्यवस्थित रूप से वंश के प्रकार में आबद्ध कर वंशानुचरित की श्रेणी में विकसित हुए। अनुवंश श्लोकों का रूप वायु पुराण में उल्लेखित है। अ तत्रानुवंश श्लोकोयम यस्मिन् गीतः पुराविदई। ब अत्रानुवंश श्लोकोयम गीतो विपेह पुराविदई। ब्रह्म क्षत्रयस्य यो योनिर्वशो देवसी सत्कृतः। स अत्रानुवंश श्लोकोयम भविष्य शैरुदाहृतः इक्षाकुणां मयं वंशः। सुमित्रांतो भविष्यन्ति, सुमित्रं प्राप्य राजानां संस्था प्राप्स्यति वैकलौ। यहाँ ब्रह्म क्षत्रियस्य और इक्ष्वाकुणां श्लोक पुराविदो और भविष्यज्ञों के हैं। संभवतः वायुपुराण ने ये श्लोक पुराने ग्रंथों के लिए हैं। पुराणों के पंच लक्षण के संबंध में आचार्य शुक्र का कथन है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वान्तराणि च वंश्यानुचरितं चैव पुराणं पंच लक्षणम्। अर्थात सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर और वंशानुचरित ये पांच प्रधान विषय पुराणों में वर्णित हैं। वंश के संबंध में भागवत पुराण में लिखा है कि राज्ञां ब्रह्म प्रसूतानि वंशस्यैकालिको अन्वयः। अर्थात ब्रह्म प्रसूत जितने राजाओं की सृष्टि हुई उनकी भूत भविष्य तथा वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश नाम से पुकारते हैं। यद्यपि वंश के अंतर्गत राजाओं की ही संतान परंपरा का उल्लेख प्रधान है, परंतु वंश के अंतर्गत ऋषियों के वंश का ग्रहण अन्य पुराणों में किया गया है। भागवत पुराण में अंतिम लक्षण वंशानुचरित के संबंध में लिखा है कि वंशानुचरितम तेषां वृत्तम वंशधराश्च ये। अर्थात पूर्वोक्त वंशों में उत्पन्न हुए वंशधरों का तथा मूल पुरुष राजाओं का विशिष्ट विवरण जिसमें वर्णित होता है वह वंशानुचरित कहलाता है। यहाँ मनुष्य वंश में प्रसूत महर्षियों तथा राजाओं का चरित भी समाविष्ट समझना चाहिए। चारणों की सामान्य मौखिक परंपरा में वंश विवरण सुरक्षित रहा। कालांतर में वंश साहित्य का निर्माण हुआ। वंश की बौद्ध परंपरा ईसवी सन के कुछ शताब्दियों पूर्व प्रारंभ हुई, जिसमें महावस्तु का राजवंश तथा सुत्तपिटक का बुद्ध वंश लिखा गया। यह रचना सिंघली अह कथा दीपवंश महावंश तथा उसी के समान अन्य रचनाओं की परंपरा में लिखी गई। अपने धर्म के प्रचार के लिए जैनियों ने भी इस परंपरा को स्वीकारा। इतिहास परंपराओं के अर्ध ऐतिहासिक रचनाओं में हरिवंश तथा रामायण जैन सांचे में लिखे गए। वंश परंपरा लेखन का तृतीय प्रकार राजकीय दरबारों और सचिवालयों में विकसित हुई। कम से कम मौर्य काल से शासकीय अभिलेखागार एवं अभिलेखों की व्यवस्था की गई। अन्य अनेक विवरणों प्रलेखों के अतिरिक्त अभिलेखागारों में प्रचलित प्रथाओं व्यवस्थाओं स्वदेशी विदेशी राजाओं से प्राप्त भेंट उपहार राज्याधिकारियों द्वारा प्राप्त भेंट तथा ग्रामों निगमों तथा परिवारों द्वारा प्राप्त सामग्रियों को लिखकर सुरक्षित रूप में रखा जाता था। विंसांग ने भी लिखा कि राजकीय अभिलेखागारों में विभिन्न प्रकार के राजकीय परिवार के विवरण रखे जाते थे। अल्वरेनु ने काबुल के शाही नरेशों के अभिलेखों का विवरण दिया है, उसमें उनके वंश का विवरण लिखा गया था। धर्मशास्त्रों में राजाओं के लेखकों से संबंधित वंश का विवरण प्राप्त होता है। कौटिल्य ने लेख लिखने वालों को निर्देश दिया है कि राजाज्ञा प्रसारित करने वाले राजा की उपाधि और वंश नाम अवश्य लिखना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि किसी को लंबी भूमि पृष्ठ संख्या 166 दान देने के समय राजा को एक स्थायी राजाज्ञा देते समय अपना हस्ताक्षर नाम एवं वंशावली लिखकर देनी चाहिए। बृहस्पति एवं व्यास के अनुसार भूमि दान पत्र पर राजा के वंश तथा वंशानुपूर्वी का उल्लेख होना चाहिए। राजवंशावली होने के कारण ही संभवतः इसे कभी कभी पूर्वी प्राचीन इतिहास कहा गया है। ये आज्ञाएं निश्चित रूप से यह संकेत करती है कि राज्य अभिलेखागारों में राजकीय वंशावली सुरक्षित रूप से रखी जाती थी, परंतु ये अभिलेखागारों के लेख अपने मूल एवं पूर्ण रूप में हमें अप्राप्त हैं। वंशावलियां बाहर के प्रांतों में सुरक्षित रखी जाती थी। इन वंशावलियों की विभिन्न शाखाएँ भारत लंका बर्मा तथा राजकीय दरबारों मठों मंदिरों में बिखरी पड़ी हैं, जिनके अंश संस्कृत में उद्धृत किए गए हैं। संस्कृत क्लासिकल साहित्य में रघुवंश तथा हरिवंश में समन्वित रूप में वंश विवरण लिखा गया। अश्मक वंश का उद्धरण भामह ने अपने काव्यालंकार में तथा शशि वंश का क्षेमेंद्र ने कवि कंठाभरण में दिया है। क्षेमेंद्र की नृपावली, हेलराज की पार्थिवावली कल्हड़ द्वारा उद्धृत किए गए हैं। एकादश राजकथा तथा हर्ष की गौडोर वेश, कुल प्रशस्ति आदि वंश साहित्य की रचनाएं हैं। भाग्य के अतुल की मुशीक वंश तथा रुद्र की राष्ट्रोद वंश सुरक्षित प्राप्त है। इसी वंश साहित्य लेखन श्रेणी में कल्हड़ की राजतरंगिणी और उसके अधिकारियों की गणना की जाती है। कालांतर में भृगवांगिरसो द्वारा इतिहास के वंश साहित्य की रचना राज दरबारों में की गई। पूर्व मध्य काल में यह परंपरा निर्बाध चलती रही, परंतु उनका पर्यावसान ऐतिहासिक रचनाओं में होने लगा था।